प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग एक, लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टगापी
कर्मणे प्रणमण करो
धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने बड़ी शेष तीर्थंकरने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपविया चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदो वणी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्ततारी हंतने हरिहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये गणधरने कर्मापकोने सर्व साधु समूहने तसुशोध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनि ये नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुंकुन भगवान द्वारा प्रणीत यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्र आचार्य ने तत्व प्रदीपिका नाम की टीका लिखी हुई है तथा श्री जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए है। उसमें से ये पहली पुस्तक है प्रवचन सुधा भाग एक। उसके हम पृष्ठ संख्या 42 से पढ़ना है बाद में, पर पहले 43 पर जयसेन आचार्य की जो संस्कृत टीका है वहां से पढ़ेंगे। वो बीच में लिखा है ना छोटी लेटर में, वो संस्कृत टीका, हाँ उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। देखो अथ यानी अब यहाँ शुभाशुभ शुद्धोपयोग त्रयेण परिणतो जीव, यानी शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग, ये तीन रूप से परिणमने वाला जो जीव है वह शुभ अशुभ शुद्धोपयोग स्वरूप भवती इति उपदेशति, यानी वो जीव ही स्वयं उस उपयोग रूप होता है। यानी जीव शुभोपयोग रूप है, जीव अशुभ रूप और जीव ही शुद्धोपयोग रूप। अब ये गाथा का अर्थ कहते हैं। जीवो परिणमति जदा सुहेन असुहेन वा, जीव कर्ता, ये वाक्य का कर्ता कौन है, जीव क्या करता है, यदा परिणमति जब परिणमता है, किस रूप से, शुभेन अशुभेन वा परिणामेन, शुभ या अशुभ परिणाम से परिणमता है तो क्या होता है, सुहो असुहो हवदी तदा, यानी तब शुभेन शुभो भवती अशुभेन वा अशुभो भवती, यानी जब वो शुभ रूप से परिणमन करता है वो जीव स्वयं शुभ रूप शुभ होता है और वो अशुभ रूप से परिणमन करता है तो स्वयं जीव अशुभ होता है, ऐसा कह रहे हैं। शुद्धेन तदा शुद्धो ही, शुद्धेन यदा परिणति तदा शुद्धो भवति, यानी पूरा अभेद करके अखंड द्रव्य ही शुद्ध हुआ ऐसा कहेंगे। जब वो शुद्ध रूप से परिणमता है, हाँ ये क्यों, क्योंकि उस समय वो पर्याय से तद्रूप है, तन्मय है।
पेज नंबर 43 जयसेन आचार्य की टीका चल रही है, तीन लाइन हो गए। हाँ देखो, शुद्धे न हो गए ना, शुद्धे न यदा, चौथी लाइन, यदा परिणति तदा शुद्धो भवति, यानी जब शुद्ध रूप से परिणमता है तब शुद्ध होता है। ही यानी स्फुटम, यानी खरेखर। कथम भूतः सन, क्या करते हुए, क्या होते हुए, परिणाम सद्भावो, परिणाम सद्भाव सन इति तद यथा, वो इस प्रकार से बता रहे हैं। यानी परिणाम सद्भाव, यानी परिणाम स्वभाव होकर, यानी वो जीव परिणाम स्वभावी है और वो स्वयं परिणमता है, तो उस रूप उस समय होता है। तद यथे ने अभी उसको स्पष्ट कर रहे हैं, वो इस प्रकार है। यथा स्फटिक मणि विशेषो निर्मलो अपि जपा पुष्पादि रक्त कृष्ण श्वेत उपाधि वशेन रक्त कृष्ण श्वेत वर्णो भवति। यानी जो स्फटिक मणि है वो खास निर्मल है, किसी रंग का नहीं होता, कलरलेस होता, यानी निर्मल होता। ऐसा होने पर भी जपा पुष्पादि, यानी अलग अलग कलर के फूल आदि में जपा पुष्प, तमालपत्र पुष्प वगैरह अन्य उन्होंने नाम लिए थे, तो उसमें तीन प्रकार के लिए, रक्त ने लाल, कृष्ण ने काला और श्वेत ने सफेद। उपाधि वशेन, उसके निमित्त से, उसके संयोग के निमित्त से रक्त कृष्ण श्वेत वर्णो भवति, स्वयं वो स्फटिक ही उस वर्ण वाला हो जाता है। तथा ये तो दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार अयम जीव, यह जीव स्वभावेन शुद्ध बुद्ध का स्वरूपोपि, शुद्ध बुद्ध के, शुद्ध बुद्ध ही का चाहिए, हाँ एक स्वभाविक शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाविक नौ नंबर ना, मेरा संस्कृत में शायद हो सकता है कि शुद्ध बुद्धैक स्वरूप भी, बुद्धैक बुद्ध का हुआ है ना, बुद्धैक शुद्ध बुद्ध एक, वो एक हो जाता है उसको, हाँ एक बुद्ध के ऊपर डबल मात्रा देना, बुद्धैक शुद्ध बुद्धैक स्वरूप, यानी शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप होती, यानी शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप होने पर भी, समझ में आया क्या करना, हाँ हाँ वो होने पर भी व्यवहार है ना, व्यवहार की अपेक्षा, गृहस्थापेक्षा यथा संभवम, यानी भी गृहस्थ की अपेक्षा और मुनि की अपेक्षा दो अलग अलग बता रहे, उनके गृहस्थ के शुभ भाव और मुनियों के शुभ भाव। तो गृहस्थ की अपेक्षा क्या कहते हैं, यथासंभव, यानी वहां होने वाले जो है यथासंभव सराग सम्यक्त्व पूर्वक दान पूजादि शुभ अनुष्ठानेन अने तपोधनापेक्षया तु मूलोत्तर गुणादि शुभानुष्ठानेन परिणतः शुभो ज्ञातव्य इति। यानी गृहस्थ की अपेक्षा सराग सम्यक्त्व पूर्वक कौन सा अनुष्ठान है, दान पूजादि शुभ अनुष्ठान। सराग सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक्त्व के साथ वहां जो राग विद्यमान है उसको सराग सम्यक्त्व कहा, यानी सम्यक दृष्टि का राग है ये। तो दान पूजा वगैरह शुभ अनुष्ठान। तपोधन का अर्थ होता है मुनि, और मुनि की अपेक्षा से उनके क्या है, मूल गुण और उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठाने न परिणता, इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप से परिणत जो है उसको शुभ ज्ञातव्य, यानी समझना। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग पंच प्रत्यय रूप अशुभोपयोगेन अशुभो विद्येय, यानी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, ये जो पांच प्रत्यय रूप, यानी जिसको पांचों है तो वो जो क्या है अशुभोपयोगेन, उसको अशुभ समझना चाहिए। निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगेन परिणतः शुद्धो ज्ञातव्य इति। और निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्ध उपयोग से परिणत जीव को शुद्ध समझना चाहिए। किंच जीवस्य असंख्येय लोकमात्र परिणामः सिद्धान्ते मध्यम प्रतिपत्या मिथ्या दृष्ट्यादि चतुर्दश गुण स्थान रूपेण कथितः। यानी जीव के जो असंख्यात लोकमात्र जो परिणाम है सिद्धांत में बताए हुए है, मध्यम प्रतिपत्या ने आयोजित एवरेज मध्यम रूप से उसको 14 में विभाजित किए है, तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग उसके भेद, तो मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थान रूप से उनको बताया है। अत्र प्रावृत शास्त्रे, इस प्रावृत शास्त्र में तान्येव गुणस्थानानि, उन्हीं गुणस्थानों को संक्षेपेण यानी वो 14 को संक्षेप से शुभ अशुभ शुभ शुद्धोपयोग रूपेण कथितानि। मिथ्यात्वादि पहले अशुभ फिर शुभ और फिर शुद्धोपयोग। कथमिति चेत, वो कैसे है? इति मिथ्यात्व संसाधन मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्येन अशुभोपयोग। मिथ्यात्व संसाधन और मिश्र गुणस्थान में तारतम्य रूप से यानी वो घटता हुआ, हम कहेंगे घटता हुआ अशुभोपयोग। तदनंतरम उसके पश्चात असंयत सम्य दृष्टि देश विरत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रय तारतम्येन शुभोपयोग। यानी उसके पश्चात चौथे पांचवे और छठे गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहेंगे। तारतम्य कहने से पहले तारतम्य का अर्थ घटता हुआ, दूसरा अभी तारतम्य ने बढ़ता हुआ। तदनंतरम अप्रमत्तादि क्षीण कषायांत गुणस्थान छठे तारतम्येन शुद्धोपयोग। यानी उसके बाद हाँ छठे से बारहवें तक तारतम्य रूप से शुद्धोपयोग ने बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग क्या कहते
हैं?
नहीं नहीं सातवें से, सातवें से, सातवें से, सातवें से अप्रमत्तादि मैंने पढ़ा ना। हाँ अप्रमत्तादि क्षीण कषाय वे शुद्धोपयोग के गुणस्थान है। तदनंतरम उसके पश्चात सयोगी अयोगी, सयोग्य है ना, क्या सयोगी अयोगी असवो यज्ञ हुआ, सयोगी अयोगी जिन गुणस्थान द्वय, सयोगी जिन और अयोगी जिन ये दो गुणस्थानों में शुद्धोपयोग फलमिति भावार्थ, वो शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग तो बारहवें तक है, बाद में उसका फल है। जैसे ध्यान बारहवें तक है, बाद में वो ध्यान का फल है। ध्यान का अर्थ क्या है? अन्य से उपयोग हटाकर एक में लगाना। अभी केवल ज्ञानी को ऐसा कह सकते उसने एक में उपयोग लगाया, वो तो पूरा ही उपयोग स्वरूप है। इसलिए
तो बोला जाएगा
ना? नहीं, वो उपयोग का फल कहेंगे। देखो अभी 42 नंबर पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन, यहाँ से गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता है, उसको पढ़ेंगे। वो 42 पेज पर, उसके पहले पेज पर परिणाम सद्भावो अर्थात परिणामवाना स्वभाव वालो हुआ थी, पर्याय थी सिद्ध करवो छे ना। यानी जीव का स्वभाव कैसा है? सभी छह द्रव्यों का परिणाम, परिणाम ना उसका स्वभाव है। अब टीका, जारे आ आत्मा शुभ के अशुभ राग भावे परिणमे छे, दयादान रत भक्ति आदि शुभ राग पने जीव थाई छे, ते छे पुण्य बंधनु कारण धर्म नहीं, छता पण ते रूपे जीव परिणमे छे, वो जीव का परिणमन है। सवारमा कहियो तू के शुभराग नु कार्य पुद्गल नु छे अने कर्ता पुद्गल छे, समय सार में दृष्टि का विषय बताना है, इसलिए उसको वो इसका है ही नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव जैसा परिणाम नहीं तो उसका है ही नहीं। जैसे कोई कहते ना, कोई बच्चा बिगड़ गया, कुछ ऑफलाइन चला गया, तो हमारा नहीं है वो, तो क्या किसी के संगत जो है ना, तो वो उसका है, उसके जैसा हो गया, ये हमारे कुल को शोभा नहीं देता, हमारा है ही नहीं, ऐसा कहते हैं इस तरह से। कई अपेक्षाएं कहूं तो भाई, समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ छे, वहां द्रव्य दृष्टि की बात बताएंगे, बाकी पर्याय को राग को है ही नहीं कहेंगे, गौण करेंगे और गौण करके अभूतार्थ कहेंगे। एथी द्रव्य नो स्वभाव जहां दृष्टि में आयो छे त्या पर्याय शुद्ध स्थाई छे। आहा भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध भगवान छे, जे परम स्वभाव छे तेनी जे पर्याय थाय ये तो शुद्ध ज थाय। ज्ञायक भावनु परिणमन तो तेनी पर्याय तो शुद्ध थाय। आ द्रव्य स्वभावनी दृष्टि थी कथन छे ने। देखो जैसे हम सीता 47 शक्ति में क्या कहते हैं, वो समय दृष्टि के हाँ निर्मल परिणम उछलती हुई है, वो निर्मल पर्याय रूप परिणम थे, यानी स्वभाव है तो अपने रूप से परिणमेगा, इस तरह से उसका कथन आता है। वहाँ विभाव को वहाँ उसमें स्वीकार नहीं करते। इसी कहते ज्ञायक भावनु परिणमन तो तेनी पर्याय तो शुद्ध थाय। आ द्रव्य स्वभावनी दृष्टि थी कथन छे तेथी तेमा शुभाशुभ परिणाम थाय ते द्रव्य स्वभाव थी थयेला नथी, तेथी विभाव रूप थयेल भावो पर्याय मा द्रव्य गुण ना अवलंबन विना अधर थया छे। ये कथन समय सार का है। अभी यहाँ की बात अलग है, ये प्रवचन सार चल रहे, छता अही आगल कहे छे ने अंदर कि आ आत्मा शुभ के अशुभ राग भावे परिणमे छे। देखो अभी नेक्स्ट पेज 44 पर नीचे वो भावार्थ के भी नीचे एकदम लाइन है ना बीच में, हाँ एकदम नीचे चले जाना, हाँ 6 लिखा है वहां पर, दयादान व्रत भक्ति पूजा भगवान नु स्मरण ए बधो शुभ राग छे, ते राग रूपे पण जीव पोते पर्याय मां थाय छे, अने अशुभ राग रूपे विषय वासना नो राग काम क्रोध मान माया लोभ ए बधा अशुभ भाव रूपे पाप भाव रूपे पण आत्मा पर्याय मां परिणमे छे। देखो ये ज्ञान की अपेक्षा उसका वो फल भी उसको मिलेगा, वो भोगेगा भी, ये ज्ञान का कथन है। ज्ञान की अपेक्षा उसका वो परिणमन है तो वहाँ उसका वो तो हाँ वहाँ उसका वो उतना राग रूप है तो दुख रूप परिणाम भी है तो उसका वो भोगेगा भी उसको, इस तरह से दृष्टि का दृष्टि ने वहाँ केवल स्वभाव को स्वीकार करती, श्रद्धा स्वभाव को स्वीकार करती है और वो स्वभाव रूप परिणमन को अपने में रखती है, बाकी वो विभाव है उसको मेरा है ही नहीं करके उसको भेद ज्ञान कराना है उससे, राग से अपना अनादि से क्या हुआ है कि मैं ज्ञानमय हूँ और राग मेरे परिणमन में पर्याय में है, पर लगता क्या है जीव को ये मैं ही इस रूप हो गया, अभी तो ज्ञान की अपेक्षा कहे ना वो उस रूप हो गया है, परंतु उसकी भिन्नता उसके ख्याल में नहीं आती, यानी उसका ज्ञान भी होना चाहिए नहीं तो मेरे में है ही नहीं कहेगा तो फिर वो उपाय क्यों करेगा। ज्ञान की अपेक्षा उसका स्वीकार पहले होगा, फिर दृष्टि की अपेक्षा वो स्वभाव पर दृष्टि ले जाएगा उसको गौण करके।
देखो
आवाज आ रही बहुत जोर से आवाज है, मंगलाचरण से चालू है उसकी आवाज, वो पकड़ना बराबर बहुत जोर से आवाज, हाँ हाँ अभी कम अभी बंद हो।
अच्छा अच्छा मुझे लगा कि मेरी जोर से आवाज आ रही
है।
देखो बात ऐसी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है तो ये जो शुभ या अशुभ परिणाम जो जीव में उत्पन्न होता है क्योंकि वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, तो यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाएगा कि वह जीव ही स्वयं राग रूप या द्वेष रूप यानी पुण्य रूप या पाप रूप परिणमता है, ज्ञान की अपेक्षा से वो बात सही है, लेकिन जब हमें अपने आत्मा का अनुभव करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिकाली जो अपना कायम टिकने वाला ऐसा जो स्वभाव है उसमें अपना कंसंट्रेशन करेंगे तो वहाँ राग और द्वेष है ही नहीं, तो पर उत्पन्न तो हो रहे ना, उत्पन्न हो रहे तो कहेंगे जिसके कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, मान लो सामने यहाँ 2000 की नोट पड़ी है तो हमको उठाने के भाव होते हैं तो हम कहेंगे कि नोट नहीं होती तो हम थोड़ी भाव करते, लेकिन भाव हुए हैं ना, ये कह रहे हैं कि जब स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाता है तो उसमें राग द्वेष के परिणाम है ही नहीं, तो वो जो उत्पन्न हुए वो पुद्गल के कारण से उत्पन्न है,
इसलिए वहाँ कर्म समझना पुद्गल का अर्थ कर्म के उदय के
समय सार में उसको पुद्गल का कहा और यहाँ प्रवचन सार में ये राग भाव कहो पुण्य पाप के परिणाम कहो ये जीव स्वयं उस रूप परिणमता है, इसलिए वह स्वयं राग रूप है स्वयं पाप रूप है स्वयं शुभ रूप है, इस तरह से उसका यहाँ वर्णन किया है। यानी आपको ना समय सार आपने पढ़ा है ना प्रवचन सार, अभी हम प्रवचन सार को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान की अपेक्षा से मुख्यता से यहाँ सारा कथन होगा। लेकिन बार बार गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह में समय सार सिखा देते, दोपहर में प्रवचन सार सिखा देते, तो नए लोगों को पता ही नहीं लगे कि क्या चल रहा है। एक दफे ऐसा बोलते, एक दफे ऐसा बोलते हैं, इसलिए ये आपके ख्याल में आवे इसलिए मैंने ये सारी बातें बताने की कोशिश की। आगे
बंद है ना, फिर भी आवाज आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ अभी बंद है। हाँ देखो, ये आत्मा ही शुभ और आत्मा ही अशुभ कहा ना, तो इससे शुभ और अशुभ आत्मा का अनुभव तो अनादि से चल रहा है। अब इसे शुभ और अशुभ परिणाम होते हुए भी उसी समय उसको अपने शुद्ध का अनुभव करना है। पर्याय में अशुद्धता है, शुभाशुभ है और उस रूप द्रव्य हो रहा है, ये तो कह रहे। ऐसी अवस्था में भी उसको कौन से आत्मा का अनुभव करना है, ये पर्याय उस रूप परिणत आत्मा का नहीं, उसी समय जो स्वभाव विद्यमान है। स्वभाव में वो घुस नहीं गए, वो तो क्षणिक पर्याय में है, इसलिए वो स्वभाव का यहाँ अनुभव करना है। स्वभाव के लक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न होगी, उस पर्याय का अनुभव कहो या स्वभाव का अनुभव कहो, बात एक ही है। तो वो विषय समय सार में लिया है। अब यहाँ जैसा परिणमन है उसकी बात यहाँ बता रहे। अब नीचे पढ़ेंगे लास्ट लाइन 44 पेज सवानुकायिक ने अत्यानुकायिक। अहीं तो ज्ञान प्रधान कथन छिन्न आ वस्तु, तो वस्तु ने अभी आत्मा की बात है। शुभ अशुभ भाव पर्याय मा छे, ए तो पहला नक्की थवू जोइए, नहीं तो है ही नहीं तो काहे को, वो तो फिर प्रयास ही नहीं करेगा। जैसे हम उदाहरण देते, कपड़ा मलिन हुआ है, तो कपड़ा मलिन हुआ है इसका ज्ञान होगा, परंतु उसी समय श्रद्धा क्या है, ये मलिनता जुदी है और कपड़ा जुदा है। कपड़ा तो कपड़ा रूप है, मलिनता मलिनता रूप है, तब जाके उसको धोने का और वो मलिनता दूर करने का प्रयत्न होगा। ऐसे ही यहाँ पर्याय में राग द्वेष है, आत्मा का वो परिणाम है, पहले इसका स्वीकार होना चाहिए, फिर वो किस तरह से उसका अनुभव करना, किस तरह से वो समय सार में बताए। तो कहते पहला नक्की थवू जोइए, जे काले जे समय जे पर्याय थाय छे तेनो जन्म क्षण छे, वो उसी समय उत्पन्न होने वाली है, तेम नक्की कर्या पछी तेना द्रव्य स्वभावनी दृष्टि थी कहे त्यारे तेना परिणाम जे विकारी छे तेनो ते स्वभाव छे ते कर्ता केम थाय। क्या कहा, विभाव का कर्ता स्वभाव कैसे हो सकता है? वो पर्याय अपने से उत्पन्न हो गई, उसके अपने जन्म क्षण से, अपने षटकारक से हुई, ऐसा कहेंगे वहां पर। यानी वो द्रव्य स्वभाव से उसकी भिन्नता बताई जाएगी, पर पहले उसका स्वीकार किया जाएगा। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु छे, ते निर्विकारी घन छे, तो ते निर्विकारी राग नो करता केम था है, परंतु राग हो रहा है ना, तो उसका कर्ता ये स्वभाव कैसे हो सकता है? इसलिए स्वभाव के कारण वो राग नहीं हुआ, ये बताना चाहते हैं। ए अपेक्षा ए सवार मां कहियो तो आवी बात छे। आहाहा, पण अहीं कहे छे, जब अहीं कह रहे तो अभी जो वर्तमान में हमारा प्रवचन सार चल रहा है, कभी कभी समय सार में भी दो अलग अलग जगह अपेक्षा जो अलग अलग लगाते हैं, तो हमेशा कहेंगे अहीं ये बात है, और वहां यानी जिस गाथा में जिस अपेक्षा से जो कथन है वहां वैसा है, वो एक ही बात सर्वत्र लागू नहीं होगी, भले वो निश्चय की है, परंतु हर बार उसी अपेक्षा से कथन होगा ऐसी कोई बात नहीं है। वो गाथा में क्या कहना चाहते हैं वो ऐसा हमको कथन करना है। यानी जैसे होंगे ना, राग करता है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ है वो राग का करता है, पहले सिद्ध करेंगे, ये ज्ञान अपेक्षा कथन चल रहे हैं। पण अहीं कहे छे के पर्याय मां जे अशुद्धता छे ते तो तेनी पोतानी छे। सवारनी वात तो द्रव्य स्वभावनी दृष्टि थी वात हती, जारे अहीं तो ज्ञाननी प्रधान थी वात छे। के राग पर्याय मां तेना मां थाय छे, आत्मा शुभ अशुभ भावे राग भावे थाय ते राग छे। यानी आत्मा राग है, आत्मा शुभ है, आत्मा अशुभ है,
चाहे तो भगवान नी भक्ति हो के भगवान नु स्मरण हो, पण ए बधो शुभ राग छे, ते काई धर्म नथी। अरे इने क्या पड़ी छे, अनंत काल थी 84 ना अवतार मां रखड़े छे। आहा हा, आ जगत नी पड़ोजन करी करी ने मरी जाए, ने पछी ढोर मां जाए, पशु थाय, कागड़ा कूतरा थाय। हा, अरे इने शू कर्यु छे? पड़ोजन एटले नकामी मेहनत। अननेसेसरी उसके पीछे पड़ोजन, नकामी माथाकूट कहे छे। हाँ, पंचत पड़ोजन मरी जाए। हाँ, स्वता की अपने बारे में सोचने के लिए उसको फुर्सत नहीं मिलती ना। अहीं कहे छे के शुभ अशुभपणे परिणमे छे ते आत्मा पोते छे, कर्म ने लईने नहीं। है ना बात? क्योंकि वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसका परिणमन हो रहा है, भले वो विभाव रूप भी क्यों ना हो, परद्रव्य से उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हम हमेशा देखें घड़ी से ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे यहाँ पर लेना है। कर्म से राग नहीं हुआ है, वह हुआ है अपने से। समयसार में कहेंगे वो कर्म का है, हमारा है नहीं। इस तरह जीव तेनो स्वतंत्रपणे करता छे, अर्थात पर्याय पर्याय नो करता छे। आत्मा शुभ के अशुभ राग भावे, राग भावे एटले के शुभ ने अशुभ बनने राग छे। हवे कहे छे के त्यारे जासुद पुष्पना के तमाल पुष्पना लाल के काला रंगे परिणमेला शुभ अने ने जुदा चाहिए, शुभ ने अशुभ बे लेवा छे, बे लेवा छे ने। तेथी हूँ प्रश्न चिन्ह नीचे गया, ठीक है। तेथी जासूद पुष्पना के तमाल पुष्पना, जासूद पुष्प लाल छे अने तमाल पुष्प काला छे, ए रंगे परिणमेला स्फटिकनी जेम, स्फटिक रतन छे ते स्वच्छ होय छे, पण तेने लाल ने काला रंगना पुष्पनु निमित्त होय छे। तेथी परिणमेला स्फटिकनी जेम परिणमे छे तो स्फटिक, त्यारे लाल काळो रंग निमित्त छे, पण लाल ने काळा रंगे स्फटिकनी पर्याय पोतानी योग्यताथी परिणमे छे। आ लाकड़ा नीचे लाल फूल मूको तो आ अनु स्वभाव नहीं परिणमे, क्या कहते हैं? पत्थर के बाजू में लाल फूल रखो, वो परिणमता है क्या लाल पर? नहीं, वो स्फटिक ही क्यों होता है? क्योंकि स्फटिक में ऐसी योग्यता है, जो स्फटिक की अपनी योग्यता है, वो स्वयं उस रूप परिणमता है। पर स्फटिक ने पर्याय नी योग्यता ने कारण यानी उस समय भी उसका अपना निर्मल स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है, उस निमित्त के संयोग में वो लाल रूप हो रहा है, पर उसके अपने उस वो, हाँ वो उस, अकेला उसको देखो तो निर्मल ही है। तो कहते स्फटिक ने पर्याय नी योग्यता ने कारण लाल ने काला फूल ना संयोग मा ते परिणमे छे, एटले के लाल ने काला पने तेनी पर्याय परिणमे छे। हवे द्रव्य कोने केवू ने पर्याय कोने केवू ए अज्ञानी ने क्या खबर छे? अभी द्रव्य पर्याय अभी जो बात चली ना, आप नहीं थे शिविर में, नहीं थी आप, द्रव्य गुण पर्याय की बहुत अच्छी बात हुई अभी देवलाल जी में शिविर में। जब तक उसका खुलासा नहीं होता है, उसके जो बेसिक पकड़ नहीं होती है, तब यहाँ क्या कहना चाहते कुछ हाथ में नहीं आए, बिल्कुल कुछ नहीं समझेगा। श्रोता पूछते द्रव्य एटले पैसा, क्योंकि वही द्रव्य मालूम है, शब्द थोड़े होते हैं, लौकिक में उसके अर्थ अलग है और यहाँ उसके अर्थ अलग होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री, पैसा ए पैसा नु धूर नो ए शू काम छे? अने शास्त्र की बात चल रही, वहां पैसा याद भी कैसे आता है जीवों को? दुनियादारी की याद करने की क्या जरूरत है? फिर भी वो द्रव्य कहने से पैसे पर नजर जा रहे। बधा शेठियाओ तो माटी धूल ना धनी छे, किसके मालिक है ये धूल के? धूल धूल नो, वो तो
एक दफा उन्होंने लिखा कि जुड़ना जरूरी
है। 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ मड़िया। एक करोड़पति एटले जड़नो पति, दूरनो पति छे। ए चैतन्य नहीं आवू छे बापू। भगवान तो एम कहे छे के पैसाना मागणो छे ए बधा भिकारा छे, मागण छे, मागणी ने भिकारी, मांगने वाला। अमने पैसा आपो, अमने पैसा आपो, अमने पैसा आपो एम मागे छे। पहले हम वहाँ रहते थे ना सोसाइटी में, रोज रात को ऐसे भाई वो बूम मारती थी, कहीं खावानो आपो बेन, ऐसा करके जोर जोर से, क्योंकि उनको पता है सारे जैन रहते हैं, रात को कुछ खाके बचा हुआ तो रखेंगे नहीं और दे देंगे, तो रोज के रात को डब्बे ले लेके आते थे वहाँ मांगने को। ये भिकारा भिकारियों अंतरमा अनंत आनंद की लक्ष्मी पड़ी है तेमा तो जोता नथी। अने आ धूड़नी लक्ष्मी माटी जड़ पुद्गल ने पोतानी माने छे। आहा हा, तेने एम थाय छे कि हूँ 5 लाख पैदा करूँ छू, पण हवे मारे 10 लाख पैदा करवानो धंधो करवो छे। मोटा भिकारा छे और भीख मांगे बिना उसको चैन नहीं पड़ती, ये कहते हैं। पहले किसी ने गुरुदेव ने बात बताई थी, किसने बताई थी? तो एक कोई ऐसे भिकारन जो थी ना, तो होगी कोई रूपाली ऐसी, तो किसी राजा को पसंद आ गई, तो उसने उसको शादी करके उसको रानी बना दिया। वह तो खाए नहीं कुछ, रोज उसको भूखी रह रही है, पतली हो गई। तो दासी को ख्याल में आ गया, तो उसने उसको पूछा क्या हुआ क्या नहीं। नहीं तो मुझे माँ के खाने की आदत है ना, ये तो पैसा खाना जाता नहीं। तो ऊपर चले जा टेरेस पर और जोर से बूम बाण खावानो आपो करके, फिर उसको खाना जाएगा। ऐसे इसको आदत हो गई है। मोटा भिकारी छे लिखा ना, दुनिया आखी गांडी पागल छे, पागल मां पागल वखणाय तेमा शू छे। अनेक पागलों में उसके कोई यहाँ ज्यादा मिल गया उसको माल, तो उसको बाकी भी उसके पीछे जैसे कोई बहुत बड़ा हो गया। अही तो ये भी बात छे, दुनिया पागल छे। 46 पेज। परने पोतानू माननारा अने सोने भूलनारा गांडा पागलो छे। परने ने अभी शरीर को तो मान ही रहा, ये पैसा भी मेरा, घर भी मेरा, बैडी मेरी, छोकरा मेरी, मेरा 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 सब कह रहे हैं, तो कहते पागल है क्योंकि अपने को भूल गया है। जैसे जो कोई रस्ते में कोई पागल ऐसे घूमते हैं, उसको ना कुछ मालूम नहीं कौन है, कहाँ का, किस घर का है, ऐसे होता है। कोई स्मृति भंश हो जाए तो कहीं भटक जाता है, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, अपना नाम भी उसको कुछ पता नहीं, कोई पूछे तो भी। तो बाकी लोगों को दया आती है उसकी, अरे इतने बड़े घर का और ऐसा भटक रहा है, उसको कोई सुध-बुध कुछ नहीं है, और यहाँ इसका क्या हो रहा है। अपने को भूल, अपने को पता ही नहीं उसका मैं कौन हूँ, और बाकी बाकी चीजों में संयोगों में ही रचा पचा है। यही कह रहे यहाँ पर के परने पोतानू माननारा अने सोने भूलनारा गांडा एटले पागलो छे। गुजराती में गांडा कहते हैं उसको, पागल। पछी भले ने गमे तेवा ग्रेजुएट थयेला होय, LLB थयेला वकील होय के MBBS थयेलो डॉक्टर होय, दोनों को ले लिया। बधा पैसाना भिकारीओ छे। हा हा, प्रश्न करते पैसा विना शाक नथी आवतु। समाधान, पैसा विना शाक आवे छे। आपने कहवा तो नथी के दाने दाने खानारनु नाम छे, सांभळ्यु छे के नहीं? तो ते शू कहे छे के खानारनु दाने दाने नाम छे एटले जे दानो जे रचकणो तेने आववाना छे, ते आववाना छे। देखो भले अन्य मती किसी अन्य रूप से कहते हैं, वो होता है खाने दाने दाने पे खाने वाले का नाम, उसका अर्थ यही है। जिस रचकन की जो योग्यता है वो उसको वहाँ उस संयोग में होगा ही होगा। प्रश्न, तेनी खातरी न थी। समाधान, खातरी ना क्या ठेकाना छे, गांडा पागल कोने कहवाय। मिथ्यात्वना भ्रमण में पागल उन्मत्त थयेला ने कई भान नथी, पैसा हमें लिए छे माने ते मागण छे। कोई पूछते पैसा विना वो मकान थाय? समाधान, ए तो एनी मेळाए जड़थी मकान थयुं छे, पैसा थी थयुं नथी अने बीजा थी पण थयुं नथी। नहीं तो पैसा से नहीं, पर हमने तो पैसा दिया ना, शुभराग तो किया ना, इसलिए यहाँ हो गए कि नहीं? सोनगढ़ में इतनी बड़ी इमारत, तो कहते नहीं, उसकी अपनी योग्यता से। तो बीजा थी पण थयुं नथी, पैसा छे तो माटी धूल अजीव छे, अने भगवान आत्मा चैतन्य जीव छे, तो ते जीवनो अजीव क्यांथी थाय? ते जीव स्वरूपनुं अजीव स्वरूप क्यांथी थाय? शास्त्र में एवं कहूं छे के ते मिथ्या दृष्टि वराका छे, वराका एटले भिखारी। कहूं तो ने एक बार भावनगर ना दरबार आया था, दरबारे ने वहां के जो कुछ संस्थानिक जो कुछ राजा है ना उसको दरबार कहते, तेने कहूं तू के महीने लाख मांगे ते नानो मागण छे, 5 लाख मांगे ते मोटो मागण छे, अने करोड़ मागे ते तो मागणनो मागण, मोटो भिकारी छे। ए अमारे क्या कोई ने माखण चोपड़वानुं छे? आ बहारनुं स्वराज्य छे ते आत्मानुं नथी। स्वराज्य तो आत्मामां आनंद अने ज्ञाननो भंडार भर्यो छे ते छे, ते स्वराज्य आत्मानुं छे, स्वराज्य अपना राज्य। छतां पागलो आ परराज्यने स्वराज्य माने छे। हा हा, अमारे तो अब्जोपति होय तो पण ठीक अने भिकारी होय तो पण ठीक। आ बहारना तो धूळना राज्य छे, माटीना राजे राज्य नथी बापा। राज्य तो अंदर राज्यते शोभते इति राजा, अंदर आनंद अने ज्ञानना गुणथी आत्मा शोभे छे, तेनो राजा थाय ते राजा छे। आपने आवे छे ने एवं ही जीवराया, समयसारनी 17-18 गाथा छे ने, शास्त्रमां तो बधुं भर्युं छे भाई। अहीं कहे छे के जीव ज्यारे रागपणे शुभ शुभना रागपणे थाय छे त्यारे ते रूप थाय छे। स्फटिकमणि जेम स्वच्छ छे तेने लाल ने काळा फूलनुं निमित्त छे, त्यारे ते लाल काळापणे परिणमे छे, ते पोते पोतानी पर्यायथी स्वतंत्रपणे परिणमे छे। लाल ने काळा फूल छे माटे परिणमे छे एम नथी, निमित्त है परंतु निमित्त के कारण नहीं है, उसमें परिणमने का वैसा योग्यता पड़ी है इसलिए परिणमता है। नहीं तो लकड़ी के बाजू में रखो, कागज के बाजू में रखो, वो लाल रूप नहीं हो रहा है, स्फटिक ही क्यों हो रहा है, उसमें वैसी योग्यता पड़ी है। हाँ भाई, मारगड़ा जुदा ना था। हाँ हाँ, तारा हितना पंथ कोई जुदी जातना छे, अज्ञानी तो अहितना पंथे अनादिकाल थी रखड़ी रहे छे अने तेमा ने तेमा मरी गयो छे। અહીં કહે છે કે લાલ કાળા રંગે પરિણમેલા સ્ફટિકની જેમ પરિણામ સ્વભાવી હોવાથી, અર્થાત ભગવાન આત્મા પલટવાના સ્વભાવવાળો હોવાથી શુભ અશુભપણે થાય છે અને પલટના પરિણામના ઉસકા સ્વભાવ હોય, જેમ સ્ફટિક પણ બદલવાના સ્વભાવને કારણે લાલ અને કાળી પર્યાયપણે થાય છે, તેમ ભગવાન આત્મા પરિણમવાના સ્વભાવને કારણે શુભ અને શુભ ને હોવા અશુભપણે પરિણમે છે। શુભ ભાવને લાલ રંગની અને અશુભ ભાવને કાળા રંગની ઉપમા છે। જેમ બે રંગપણે સ્ફટિક પરિણમે છે તેમ શુભ અશુભપણે આત્મા પરિણમે છે। કેમ કે પરિણામ સ્વભાવી હોવાથી તેમ પરિણમે છે, નિત્ય છે છતાં પરિણામે છે। કલ પૂછાતા ને टकते हुए कायम बदलता है। हाँ, नित्य क्यों है? अस्तित्व। और परिणमे छे, परिणामी है द्रव्यत्व गुण। वस्तु भगवान आत्मा तो नित्य त्रिकाण छे, अविनाशी छे, तेथी उत्पत्ति नथी अने नाश पण नथी। एवो त्रिकाणी ध्रुव होवा छता परिणामी छे, अने एवो परिणमना वो भी उसका स्वभाव है, कायम रहना भी उसका स्वभाव है, और ये अनित्यपना ने बदलना वो भी उसका स्वभाव ही है। तो कहते परिणामी छे, पलट तो छे, नित्य परिणामी छे, यानी परिणमन जो है वो नित्य कायम परिणमता है, हर समय परिणमता है। नित्य छे ते अनित्य रूपे परिणमे छे, આવી વાત છે. બીજે તો આ બધું ગાંડા જેવું લાગે. હા હા, પરિણામ સ્વભાવી હોવાથી શુભ કે અશુભ થાય છે, કોણ કે આત્મા. પેલા એ છે ને કે આ આત્મા, ભગવાન આત્મા પવિત્ર ને શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન હોવા છતાં પરિણામી એટલે બદલવાના સ્વભાવને કારણે તે શુભ ને અશુભ રાગ રૂપે પરિણમે ને થાય છે. પ્રશ્ન: કર્મના ઉદયથી રાગ રૂપે થાય નહીં? સમાધાન: ઉદયની અહીં કોઈ વાત નથી, ક્યોંકિ યહાં ઉસકી બાત નહીં હૈ, નિમિત્ત કી બાત નહીં હૈ, ઉસકા વો સ્વયં કા પરિણમન હૈ વો બાત યહાં ચલ રહી હૈ. પ્રશ્ન: ગુમટસારમાં આવે છે ને એનું કર્મકાંડ વગેરે મેં તો બહુ સારી બાતે આતી હૈ. સમાધાન: એ તો નિમિત્તથી કથન છે, તે સમયે તે શુભના પરિણામનું ષટકારકપણે પરિણમન સ્વતંત્ર છે. 85 કાયની 62મી ગાથા: શુભના રાગનું જે પરિણમન પર્યાયમાં થાય છે તે પોતાના ષટકારકને કારણે થાય છે. અગર કર્મ કે કારણ હમ કહેંગે તો કર્મ વહા પડા હૈ તો શરીર કા અવતારિક શરીર ભી પડા હૈ ઉસમે ભી હોના ચાહિયે તે રાગ દ્વેષ. ઉસમે ક્યો નહીં હોતા, જીવ મે ક્યો હોતા હૈ? વો જીવ કા અપના પરિણામ હૈ, ઉસકા અપને ષટકારક રૂપ સે પર્યાય પરિણામ કે તેને પરકારક ની અપેક્ષા નથી. ઈસરીમાં મોટી ચર્ચા થયેલી. ઈસરી સમજતે? શ્રી પારસનાથ ઈસરી કહેતે ઉસકો, સમય શિખર કે પાસ. હા, ઈસરી. ઈસરીમાં મોટી ચર્ચા થયેલી અને અશુભપણે હિંસા જૂઠના ભાવપણે પણ જ્યારે પરિણમે છે ત્યારે તે પર્યાય પણ ષટકારકપણે પોતાથી પરિણમે છે. તેને કર્મની અપેક્ષા નથી અને દ્રવ્યગુણની પણ અપેક્ષા નથી. જબ નિમિત્ત કા કથન કરના હૈ તો કહેંગે ઉસકે ઉદય મેં યહાં એ બાત હો રહી હૈ કરકે. આવી વાતો છે. પ્રશ્ન: કર્મશાસ્ત્ર બધું ઉડી જાય છે, કર્મશાસ્ત્ર નિમિત્તથી કથન છે એમ તેનું જ્ઞાન કરવાનું છે. વો જ્ઞાન કા ગેય હૈ જાનને કે લિયે. નિમિત્ત કા જ્ઞાન કરાયા જાતા હૈ વહાં પર, વો કર્મશાસ્ત્ર હૈ, વહાં નિમિત્ત કે દ્વારા કથન હૈ. બાકી ઉપાદાન તો પોતાનું છે. પોતાની દશામાં રાગ ને પુણ્યપાપના ભાવનું થવું તે પર્યાયની ઉપાદાનની યોગ્યતા છે. એ ઉપાદાન લિયા ઉસકો હે વિભાવ પરિણામ, ફિર ભી ઉપાદાન કી યોગ્યતા લી ઇસમે. પોતાની તે ક્ષણે તે જ યોગ્યતા છે તેથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, આવો ઉપદેશ છે. આ કઈ જાતનો ઉપદેશ? કંઈક એમ કહો કે દયા પાળવી, વ્રત કરવા, ઉપવાસ કરવા, ભક્તિ કરવી અને યાત્રા કરવી તો સમજાય તો ખરું. એ તો અનાદિકાળનું રખડવાનું છે, પણ તે રખડવાના ભાવપણે પણ પરિણમે છે તો પોતે. આવું છે પ્રભુ, ક્યાં કહા. કુછ કરને ધરને કા ઉપદેશ દેતે તો ઠીક લગતા હૈ, વો તો આસાન લગતા હૈ. તો કહેતે તો વો કરને ધરને કી બાત નહીં હૈ, વો પર્યાય મેં વૈસા પરિણમન હૈ, વો તેરે અપને કારણ હો રહા હૈ. વો કરના ચાહીએ વાલી બાત કહાં આઈ યહાં પર? વો તો વિભાવ પરિણમન હૈ. અહીં કહે છે કે શુભ કે અશુભ થાય છે, અર્થાત તે વખતે આત્મા પોતે જ શુભ કે અશુભ છે. અને જ્યારે શુદ્ધ અરાગ ભાવે પરિણમે છે, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ ભગવાન આત્મા પોતે શુદ્ધ છે. હવે તેની પર્યાયમાં પરિણમન સ્વભાવને કારણે જ્યારે શુદ્ધપણે એટલે રાગ વિના અરાગપણે પરિણમે છે ત્યારે આત્મા જ પોતે તે રૂપે તન્મય થઈને પરિણમે છે. જીસ સમય જો પર્યાય હૈ ઉસસે વો દ્રવ્ય તન્મય હૈ. હમને અનિત્ય તાદાત્મ્ય સંબંધ હૈ ને પર્યાય કા ઓર દ્રવ્ય કા, વો બાત યહાં સિદ્ધ હો રહી હૈ ને. ઉસ સમય ઉસ રૂપ હૈ, વો ઉસ પર્યાય રૂપ સે વો પરિણમિત હૈ, ઉસસે તન્મય હૈ. કર્મનો અભાવ થયો માટે શુદ્ધપણે પરિણમે છે એમ નથી. વો ઉસકા પરિણમન સ્વયં કે કારણે, ઉસકા પરિણામ સ્વભાવ હૈ, પરિણમને વાલા સ્વભાવ હૈ, વો સ્વયં અપને સે ઉસ રૂપ પરિણમિત હુઆ હૈ. કર્મ કા અભાવ હુઆ ઇસલિયે યહાં ક્ષાયિક ભાવ હુઆ, યે બાત નહીં હૈ. આખરી વાત બાપા, ધર્મની ચીજ હજી સાંભળવી કઠણ છે બાપા. દુનિયા તો બહારથી માની બેઠી છે કે કંઈક દયા પાળી, વ્રત કર્યા, ઉપવાસ કર્યા, ભક્તિ કરી અને શત્રુંજય ગિરનારની યાત્રા કરી એટલે થઈ ગયો ધર્મ. અરે ધૂળમાં એ ધર્મ નથી સાંભળને, એ તો રાગની ક્રિયાનું પરિણમન છે. જો શુભરાગ કરતો હોય તો તે પુણ્ય છે, અને આખો દી સંસારના ધંધા સ્ત્રી પુત્રને સાચવવાના ભાવ કરે તો એકલા પાપ છે, અશુભ ભાવ છે. આહા, 48 પૃષ્ઠ પર આતે પ્રશ્ન કે તે સ્ત્રી પુત્રને મૂકવા ક્યાં, સમાધાન તેને ક્યાં રાખ્યા છે, એના હાતા કેદી. સ્ત્રી પુત્ર તો તેના આત્માના છે, એનામાં નથી. જો તેના હોય તો જુદા રહે કેમ, અને જુદા થઈને જુદા ચાલ્યા જાય છે તેથી તેના નથી. જો જુદે હે વો તો જાયંગે, કે પહેલે જન્મા તભી નહીં થી સ્ત્રી, ઉમર કે 18-20-25 સાલ હોને કે બાદ વો પતિ પત્ની હુએ તો એક દૂસરે કે બિના થે ને પહેલે, ઓર બાદ મેં કોઈ પહેલા મર ગયા જાયગા કોઈ બાદ મેં મરેગા, તો નિકલ ગઈ ના વો ઉસકી કહાં થી તો રહેગી. યે કહે રહે હરેક આત્મા હરેક દ્રવ્ય જુદા જુદા હૈ. યહાં તો અપને કો મનુષ્ય માનકર બૈઠા હૈ ને, તો યે સારે વિચાર ઇસલિયે આતે હૈ. અરે પ્રશ્ન પૂછને વાલી જાનબૂઝ કર પૂછ રહે, તો કહેતે સ્ત્રી પુત્ર તો તેના આત્માના છે, એનામાં નથી. જો તેના હોય તો જુદા રહે કેમ, અને જુદા થઈને જુદા ચાલ્યા જાય છે તેથી તેના નથી. પંખી જેમ સાંજના ઝાડ ઉપર ભેગા થાય ને સવાર પડતા પોતપોતાની દિશાએ ઉડી ચાલ્યા જાય છે, કોઈને કોઈની સાથે કાંઈ સંબંધ છે નહીં. ક્યાં કહેતે પંછી એક ગાંવ સે દૂસરે ગાંવ સ્થાનાંતર કરતે હૈ, તો એક કોઈ રસ્તે મેં ઝાડ પર ઇકઠ્ઠે હો જાય રાત કે લીએ, સુબહે ઉઠતે અપને અપની દિશા મેં ચલે જાયંગે અલગ અલગ. એમ મકાનમાં સ્ત્રીને પુત્રને બધા ભેગા થાય છે, તેઓ ક્યાંયથી પોતાને કારણે આવ્યા છે, કહી અન્ય ભવસે મરકર આય ને અભી ઓર યહાં કુછ સમય કે લીએ ઇકઠ્ઠે રહે રહે, એ પોતાની કારણે આવે છે, અને પાછો સમય પૂરો થશે એટલે પોતે ચાલ્યા જશે. પોતાની ગતિ છે ત્યાં ચાલ્યા જશે. અર આવું ભારે કઠણ છે પ્રશ્ન. માણસને પંખી સાથે સરખાવ્યા, સમાધાન પંખી શું, માણસ ઢોર જેવા છે, પશુ છે એમ નથી કહ્યું, એમ નથી કહ્યું. 14 બોલમાં સમય સારના પરિશિષ્ટમાં કહ્યું છે ને ભાઈ, 14 બોલમાં જીવને પશુ કહ્યું છે. જે અનિત્ય છે તેને અનિત્યપણે ન માને, અને નિત્ય છે તેને નિત્યપણે ન માને તો મિથ્યાત્વ છે. ક્યાં કહા, જો અનિત્ય હૈ ઉસકો તો નિત્ય માનકર ઉસકો કાયમ ટિકાને કી ભી કોશિશ કરતા હૈ, પર્યાય હૈ અનિત્ય ઓર મેં ઉસ રૂપ હું ઓર વૈસા હી કાયમ રહું, ઉસકે લીએ વિકલ્પ કરતા રહેતા હૈ, વો ઉસકે હાથ કી તો વાત હૈ નહીં હૈ. આ પણ નિત્ય અનિત્યની વાત છે. ક્ષણિક છે તે અનિત્ય છે, અને ત્રિકાળ છે તે નિત્ય છે. એકાંત નિત્ય માને તેને મિથ્યાત્વ છે, અને એકાંત અનિત્ય માને તેને પણ મિથ્યાત્વ છે. દેખો અભી જો વૈદિક જો હૈ વો કુટસ્થ માનતે દ્રવ્ય કો, એકાંત નિત્ય માનતે વો ભી મિથ્યા દૃષ્ટિ. ઓર બુદ્ધ કી માન્યતા ક્યા હૈ, બુદ્ધ કી એકાંત અનિત્ય, વસ્તુ અનિત્ય હૈ, વહાં કુછ નિત્યાંશ હૈ હી નહીં હૈ, વો ભી મિથ્યા દૃષ્ટિ. એ અહીં સિદ્ધ કરવું છે. જેસન આચાર્યની ટીકામાં એ છે ને ભાઈ, 15મા પાને પહેલી લીટી છે કે નિત્ય એકાંત ક્ષણિક એકાંત નિષેધાર્થ. જોયું 15મા પાને પહેલી લીટી છે ભાઈ, એને વો નિશ્ચય, એની જો નિત્ય એકાંત પક્ષ, એની સર્વથા નિત્ય માનને વાળા એકાંત. દેખો નય સે હમ નિત્ય કો જાનને વાલી નય જુદી હૈ, અનિત્ય કો જાનને વાલી નય જુદી હૈ, વો ઉસકો પર કી અપેક્ષા હૈ, ઉસકો સાપેક્ષ કહેતે હૈ. નિત્ય કા કથન કરતે હુએ અનિત્ય હૈ ઉસકો ગૌણ કર દિયા હૈ, અનિત્ય કા કથન કરતે હુએ નિત્ય કો ગૌણ કિયા હૈ, પરંતુ એકાંત પક્ષ વાલે ક્યા માનતે, વો સર્વથા નિત્ય હી અનિત્ય હોતા હી નહીં એસા માનતે, વો બાત સહી નહીં હૈ. ઉસમેં ને ઉનકે સામને જો પ્રવચન સાર થા ના ઉસકા હોગા ના, મૂળ પ્રવચન સાર જો ગ્રંથ હૈ ના ઉસકી બાત હૈ. अभी ये भी मेरा वो कल्पना बिन का, उसमें भी नहीं मिलेगा। अभी आगे पीछे देखेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा। ये आगे होगा क्योंकि अभी तक तो उनका नित्य एकांत नित्य अनेकांत नहीं आया ना।
ये समस्या की बात नहीं उठाई है ना, क्योंकि समस्या से
वहाँ पर भी उनका है।
हाँ
नहीं, पंद्रमा पान
सर्वथा एकांत को पशु कहा,
पर अंत में है ना वो पंद्रहवें पान पे कैसे होगा।
हाँ वो तो अंत में
एकदम, यानी वो जहाँ कहीं पर भी है। समय सारे के प्रवचन सार में ही होना चाहिए। अरे आगे ये दसवें के ऊपर है, दसवें का हेडिंग है। अभी उसमें जैसे नाचार्य की टीका देखें, अथ नित्य एकांत क्षणिक एकांत निषेधार्थम परिणाम परिणामिनो परस्परम कथंचित अभेदम दर्शयति। यहाँ 55 पान है। यहाँ पेज 55 लिख लो, यानी वो जयसेन आचार्य की टीका की पहली लाइन है। शू कहूं कि आत्मा त्रिकाली छे ते नित्य छे अने तेनु परिणामू छे ते अनित्य छे। हवे बन्ने ने एकांत माने के नित्य छे ने अनित्य नथी, ये क्या हुआ? एकांत हुआ सर्वत्र, अने अनित्य छे ने नित्य नथी तो एकांत छे। એટલે અહીં એકાંતનો નિષેધ કરવા બે વાત કરી છે, આવો માર્ગ છે। શ્રોતા કે તે સમજવું કઠણ પડે છે, પૂજ્ય ગદેશી કઠણ પડે બાપુ, અનાદિથી સમજો નથી તો શું થાય? આત્મા એકાંત નિત્ય જ છે એમ માને તો તેનું પરિણમન જે અનિત્ય છે તેને માન્યું નહીં, અને પરિણમન અનિત્ય છે તેને માને ને નિત્ય ત્રિકાળ છે તેને ન માને तो बे एकांत मिथ्या दृष्टि छे। वो मिथ्यात्व के जो पांच भेद सुने ना आपके, पांच प्रकार के मिथ्यात्व मालूम है? एक तो नाम यहाँ बताया, वो अविरति वाला वो नहीं, वो आश्रव है। हाँ, और क्या? संशय और विनय। उसमें से वो एकांत मिथ्या दृष्टि को किसको कहना वो बात हो रही है ना? क्या कहा? देखो बे एकांत मिथ्या दृष्टि छे मिला छे, जयसेन आचार्य ने टीका छे, बे टीका छे, श्री अमृत चंद्राचार्य ने श्री जयसेन आचार्य ने, बे संतो दिगंबर संतो छे। आत्मा शुभ शुभ शुद्धपणे परिणमे छे ए कोई न माने એટલે કે તે અનિત્ય છે ક્ષણિક છે એમ ન માને તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। વેદાંત છે તે નિત્ય એકાંત માને છે, હે ને વાત? વેદાંત કા મત હે વો નિત્ય એકાંત, તે પરિણમનને માનતા નથી, અને બૌદ્ધ છે તે પરિણમન ક્ષણિકને માને છે, એ નિત્યને માનતા નથી। એ સબ ક્ષણિક હે, સબ ક્ષણિક હે, સબ ક્ષણિક હે, શકે વો તો અપેક્ષાવશ નહીં, સર્વથા અનિત્ય કહે છે। માટે બે મિથ્યા દૃષ્ટિ અજ્ઞાની છે તે અહીં સિદ્ધ કરવું છે, આવી ભારે વાતો છે બાપા। હા આવો ઉપદેશ કઈ જાતનો બાપુ? આ સત્ય વસ્તુ આમ છે પ્રભુ, હા હા, સતનું સત્ય જ આવું છે। सत कहने से वस्तु हो गया समय, हाँ वो ऐसी है। दो लाइन, द्रव्य भगवान आत्मा सत छे ते नित्य छे अने पर्यायपणे अनित्य छे, परिणमन स्वभाव वालो छे, नित्य परिणामी छे, एने कायम परिणमने वाला है। તેને એકાંત નિત્ય માને તો મિથ્યાત્વ છે, અને એકાંત પરિણમન પર્યાય જ માને તો પણ મિથ્યાત્વ છે. ભારે આકરું કામ છે ભાઈ. અબ યહાં રુકતે હૈ. છાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો પાલો સોવાણી મસ્તકનમ સદા.